पंचदशी ग्रंथ के अष्टम प्रकरण में विचार चल रहा है। एक इक्कीसवां श्लोक का विचार हुआ था। तो प्रकरण का नाम है कुटस्थ दीप। कुटस्थ दीप नाम हो गया कुटस्थ दीप। किसका नाम हुआ कुटस्थ दीप? किसका नाम हुआ? प्रकरण का नाम हुआ भाई, है ना? नहीं, इधर कुछ बोल रहे थे ना, इधर कुछ दूसरा बोल रहे थे, इसलिए कहा। तो कुटस्थ दीप किसका नाम हुआ? प्रकरण। तो नाम इसलिए हुआ कुटस्थम दीपयति, कुटस्थम दीपयति प्रतिपादयति कुटस्थ दीपम, प्रकरण का नाम हो गया। कुटस्थ जो स्वरूप है ना, उसका प्रकाशन कर रहा है, प्रतिपादन कर रहा है, निरूपण कर रहा है, इसलिए प्रकरण का नाम हो गया कुटस्थ दीप प्रकरण। समझ में ना? तो कुटस्थ हो गया किसका अर्थ, किस शब्द का अर्थ? अरे भाई, किस शब्द का अर्थ हमने पूछा? प्रकरण चल रहा है त्वम पदार्थ का, किसका चल रहा है? त्वम पदार्थ का, इसलिए त्वम शब्द का अर्थ है कुटस्थ। समझ में ना? हाँ, वो लक्षार्थ, अर्थ से लक्षार्थ। तो निरूपण इसलिए किया जा रहा है, अभी माता जी पूछ रहे थे ना, इसलिए मैं संक्षेप से पहले का बोल दे रहा हूं। तो वाक्यार्थ ज्ञान है पदार्थ ज्ञानम कारणम, नियम होता है। वाक्यार्थ ज्ञान तब होगा जब पदार्थ ज्ञान हो तो, समझ में ना? वाक्य वाक्यम पद समूह, तो जो पद होता है, वाक्य का घटक होता है पद, उस पद का क्या अर्थ है उसको जानेंगे तो वाक्यार्थ का ज्ञान होता है। समझ में ना? ऐसा होता है। तो पद के अर्थ दो होते हैं, एक लक्ष्यार्थ होता है, एक वाच्यार्थ होता है। जहां पर वाच्यार्थ में विरोध होता हो, तात्पर्य की उपपत्ति ना हो, तो लक्षणा की जाती है। तात्पर्य अनुपपत्ति ही लक्षणा बीयम, न्याय में आता है। तात्पर्य की उपपत्ति ना हो, मतलब विरोध होता हो, तो लक्षणा की जाती है। जैसे गंगायम घोषो, बोल दिया गंगा प्रवाह में घोष नहीं रह सकता है, आभिर पल्ली नहीं रह सकती है, इसलिए तात्पर्य उत्पत्ति नहीं हुई, इसे लक्षणा कर दिया आपने। समझ में ना? गंगा तीर में लक्षणा कर दिया। इसी प्रकार से श्रुति बोलते तत्तमसि, तुम वही हो, है ना? इसलिए ये जो है विशिष्ट चेतन का अभेद नहीं होगा ब्रह्म के साथ, इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण से जो विरोध है ये, तो सुखी दुखी का अभेद कैसे होगा असुखी अदुखी के साथ, परिचिन्न का अभेद कैसे होगा परिचिन्न के साथ, इसलिए तात्पर्य उत्पत्ति नहीं हुई, इसलिए आप लक्षणा करेंगे। इसलिए लक्षणा वृत्ति से निर्धारण करना पड़ेगा, इसलिए तम पदार्थ लक्षार्थ होगा। तब तम पदार्थ लक्षार्थ हो गया कुटस्थ, और तम पद का वाचार्थ हो गया कौन? चिदावास, अंतकण विशिष्ट को, है ना? अविद्या विशिष्ट, जो भी कहिए, बोला विशिष्ट हो गया, है ना? तो इसलिए दोनों का निरूपण किया जा रहा है। समझ में है ना? दोनों का निरूपण किया जाएगा, है ना? तो कहने मात्र से तो वस्तु की सिद्धि नहीं होती है ना, नहीं प्रतिज्ञा मात्र ना वस्तु सिद्धि, अभी तो प्रमाण, प्रमाण देना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर निरूपण किया जा रहा है कि वाच्यार्थ अलग, चिदाभास और कुटस्थ अलग, ये चल रहा है प्रसंग। ये आपको सारांश पहले बता दिया पहले का। तो ये कह रहे हैं, और इक्कीसवां श्लोक में बता दिया कि भी देखो, ये संधि होती है, संधि संधि, एक वृत्ति नष्ट हुई दूसरी वृत्ति उत्पन्न होने से पहले, उसको संधि बोलेंगे। क्योंकि युगपत एक क्षण में दो ज्ञान नहीं होगा, एक क्षण में दो ज्ञान नहीं हो सकता है। तो इसलिए घटाकार वृत्ति नष्ट हुई, पटाकार वृत्ति उत्पन्न होने से पहले उसको कहेंगे संधि काल। अथवा जागृत अवस्था नष्ट हुई, स्वप्न अवस्था आने से पहले उसको कहते संधि। तो उसमें भी चेतन तो रहेगा, चेतन तो रहेगा। और समस्त वृत्तियों का अभाव हो गया, समस्त वृत्तियों का अभाव हो गया कहां पर हो गया भैया? केवल सुषुप्ति, सुषुप्ति में, मूर्छा में, समाधि में। हाँ, मूर्छा में भी है, हाँ, लेकिन भान तो हो रहा है, भान तो हो रहा है। हाँ, तीनों अवस्था में ले लो, तीनों अवस्था में वृत्ति के अभाव का भान हो रहा है और संधि काल का भी भान हो रहा है। तो भान तो होगा चेतन से ही होगा, ये तो सीधी बात है। चेतन के बिना तो भान किसी का होगा नहीं, लेकिन चेतन तो चिदावास है नहीं वहां पर, उस काल में चिदावास तो नहीं है। क्यों नहीं है? हाँ, अंतकरण वृत्ति नहीं है, वृत्ति नहीं ना है। अंतकरण वृत्ति हो जाए फिर सुषुप्ति क्या है? फिर अंतकरण वृत्ति ना हो तो इसलिए तो सुषुप्ति हो गई, है ना। तो अंतकरण वृत्ति ना होने से चिदावास नहीं, समझ में ना। लेकिन भान तो हो रहा है, भान तो हो रहा है। तो भान हो रहा तो कैसे पता लगेगा? उड़ने के बाद होता है, स्मरण हो रहा है। तो स्मृति अन्यथा अनुपत्ति से, स्मृति की अन्यथा अनुपत्ति से उस कूटस्थ चेतन को मानना पड़ेगा, अर्थापत्ति इसको बोलते हैं। जैसे पिनत्व अनुपत्या रात्रि भोजन की कल्पना होती ना, रात्रि भोजन यदि न करता तो दिन में न खाता हुआ देवदत्त मोटा न होता। इसलिए दिन में न खाता हुआ देवदत्त मोटा है, इसलिए रात में भोजन करता है। इसी प्रकार यहाँ पर समझना है, उड़ने के बाद स्मरण हो रहा है, मैं कुछ नहीं जाना, कुछ भी विशिष्ट ज्ञान नहीं हो, स्मरण हो रहा है, इसको कहते स्मरण। स्मरण नहीं होता यदि पहले अनुभव न हुआ होता तो, स्मरण हो रहा है इसलिए पहले अनुभव हुआ था। तो वो अनुभव चिदावास से नहीं, कूटस्थ से, इसलिए कूटस्थ चेतन तो है, समझ में ना। ये हो गया 21वां श्लोक का। और वो कैसा है कूटस्थ? निर्विकार है वो, कैसा है निर्विकार। विकार का कोई हेतु ही नहीं है, विकार का कोई हेतु नहीं है। विकार का हेतु क्या होता है? विकार का हेतु क्या होता है? क्यों विकार होता है कोई? अरे भाई वो तो ठीक है, विकार क्यों होता है? विकार कितने होते हैं नहीं पूछा मैंने, विकार क्यों होता है? विकार होता है, देखो सावयव हो तो विकार होगा, क्या हो तो है कि नहीं? अरे भाई निर्वयव में कैसे विकार होगा? सावयव हो तो विकार होगा, और वो तो ब्रह्म का कोई अवयव है नहीं है। अवयव हो जाए तो अनित्य हो जाएगा, अनित्य भी हो जाएगा ना, है ना, समझ में कि नहीं? ऐसा है, यदि यद यद अनित्यम तत्त क्या सावयवत्वम, है कि नहीं? और यत्र सावयवत्वम नास्ति तत्र अनित्यत्वम अपि नास्ति, कुत्र आत्मनि, आत्मा में हो जाएगा। इसलिए सावयव नहीं है भाई, सावयव नहीं होने से विकारी नहीं होगा। और ऐसा भी समझ लो द्वैत भी नहीं है। अरे भाई आपसे कोई भिन्न होता तब तो आप विकारी होते, है कि नहीं समझ में? इसलिए ब्रह्म से कूटस्थ ब्रह्म से कोई तो है ही नहीं भिन्न, है ना, इसलिए विकार कैसे होगा? फिर विकार नहीं हो सकता है, समझ में? तो ये कह दिया निर्विकार ना, ये ना, वो निर्विकार है जिसके द्वारा ये भास रहे हैं। अवभाषिता कौन भाषी? संधि भाषी और वृत्ति को, वृत्तियों का अभाव भाषा, ऐसे में ना, हाँ है ना, वृत्ति का अभाव भास रहा है सुषुप्ति आदि मूर्छा में समाधि में, हो गया कि नहीं भैया? ऐसा, लेकिन कूटस्थ ब्रह्म तो है वहां पर, कूटस्थ ब्रह्म स्वरूप तो है, लेकिन अविद्या की निवृत्ति नहीं होती है उससे, है ना। तो देखो, ये देखो ऐसा द्वैत हो जाएगा तो फिर विकारी हो जाएगा, ये द्वैत हो गया कि नहीं? तो चलो साइलेंट कर लो भाई, इनका है। अच्छा, और सामने बैठी है। तो आगे देखो, तो वहां पर क्या है सुषुप्ति आदि में, है ना? तो वहां पर कूटस्थ स्वरूप तो है, लेकिन अविद्या का निवर्तक कूटस्थ स्वरूप नहीं होता है। अरे भी कूटस्थ स्वरूप है, अविद्या का निवृत्ति हुई क्या? नहीं। इसलिए क्या हुआ, अविद्या का निवर्तक कूटस्थ स्वरूप नहीं होता है। यदि होता तो अविद्या नहीं रहनी चाहिए। सुषुप्ति में तो अविद्या है, विक्षेप न होने पर भी आवरण प्रधान अविद्या है। अविद्या दो प्रकार समझ लो, एक विक्षेप प्रधान अविद्या, एक आवरण प्रधान अविद्या। तो आवरण प्रधान अविद्या कहाँ पर होगी? सुषुप्ति में होगी। और विक्षेप प्रधान अविद्या कहाँ पर होगी? जागरण स्वप्न में होगी। ये तो जानते हैं आप लोग। तो लेकिन अविद्या तो है ही, पक्की बात है, लेकिन अविद्या की निवृत्ति हुई क्या? इसलिए ये सिद्ध हो गया कि अविद्या का निवर्त कूटस्थ स्वरूप नहीं होता है, समझ में ना? लेकिन कूटस्थ स्वरूप जब वृत्ति में अभिव्यक्त हो जाएगा तब अविद्या की निवृत्ति होती है, समझ में? इसलिए अविद्या की निवृत्ति के लिए क्या चाहिए? वृत्ति चाहिए, ब्रह्माकार वृत्ति चाहिए। घट विषयक अज्ञान के लिए जैसे घटाकार वृत्ति चाहिए, इसलिए ब्रह्म विषयक अज्ञान के लिए ब्रह्माकारा वृत्ति चाहिए। ये इसलिए जागृत में होगा, है शुद्ध अंतकरण हो तो। अच्छा चलो, इसलिए कूटस्थ ब्रह्म तो है। 22वां श्लोक में एवं च सति किम फलितम, ऐसा होने पर फल क्या हुआ? जिसको हमको समझना है ना, वो फल होता है जो प्रयोजन, मतलब जो काम की चीज है उसको फल समझ लो, है ना? जो हमारे लिए काम की चीज है ना, वो बताओ क्या काम की चीज हुई? एवं सत्य होने से क्या हुआ? एवं सत्य का अर्थ कूटस्थ ब्रह्म के द्वारा वृत्ति का अभाव और संधि प्रकाशित हुई, इसीलिए एवं सत्य। ऐसा होने पर फल हुआ यही, देखो कहते हैं। घटे द्विगुण चैतन्यम, घटे द्विगुण चैतन्यम यथा बाह्ये तथान्तरे, यथा बाह्ये तथान्तरे वृत्तिष्वपि ततस्तत्र, वृत्तिष्वपि ततस्तत्र वैषद्यं संधितोदिकम्, वैषद्यं संधितोदिकम्। तो संधिकाल जो है, संधिकाल है ना, और वृत्तियों का अभाव काल, तो वहां पर आनंद तो है, आनंद तो है कि नहीं? लेकिन आनंद का अनुभव तो है वहां पर, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं होता है। जैसे लड्डू वगैरह खाने पर आनंद स्पष्ट है कि नहीं? सुषुप्ति में, संधि काल में, वृत्ति के अभाव काल में ऐसा स्पष्ट नहीं होता है। केवल स्मरण किया जाता है उन्हें के बाद उसको लेकर के, है कि नहीं? बड़ा जो है, बड़ा मजा आया सुषुप्ति में, तो स्मरण को लेकर के उस आनंद का आप स्मरण करते हो, ओके कि नहीं? इसलिए स्पष्ट भान वहां पर नहीं होता है। तो यहां पर स्पष्ट भान क्यों हुआ? लड्डू खाते समय यहां पर दो चेतन है, यहां पर क्या है? घट का ज्ञान हो रहा है, यहां पर दो चेतन है, चिदाभास विशिष्ट वृत्ति ज्ञान है, ये मतलब चिदाभास चेतन, और कौन? साक्षी चेतन भी, कूटस्थ ब्रह्म में। यदि जहां पर दो चेतन होगा तो स्पष्ट भासेगा। जैसे दीवार में दो चेतन हो, दो प्रकाश हो गए, सूर्य का प्रकाश तो पहले से ही है, और दर्पण का प्रतिबिंबित प्रकाश को फिर वहां पर फेंक दिया आपने, तो दो प्रकाश हो गए कि नहीं? दो प्रकाश हो जाए तो दीवार स्पष्ट दिखती है, हो गए कि नहीं? तो वहां पर दो प्रकाश नहीं है। संधि काल में, वृत्ति के अभाव काल में दो प्रकाश, दो चेतन नहीं। कौन है? कौन नहीं है? हाँ, चिदाभास नहीं, इसलिए वहां पर स्पष्ट भान नहीं होता, ये बात कह रहे हैं, है ना? देखो, यथा बाह्य घटे द्विगुण चैतन्यम, हो गया ना? जैसे दृष्टांत बता दिया, बाहर में इसको कहते हैं व्यतिरेक, है ना? ये क्या बोलते हैं, नहीं ठीक है, अन्य ही मान लो, अन्य दृष्टांत मान लो, जहां पर समानता हो ना, तो अन्य दृष्टांत होगा। जैसे कहते हैं, जैसे यथा बाह्य घटे, देखो अन्य, जहां पर घट कहाँ है? बाहर है। घट कहाँ है? किसके बाहर है? आत्मा के बाहर नहीं समझना, शरीर के शरीर के बाहर है भाई। कोई अंदर बाहर होता नहीं संसार में, शरीर की उपाधि से अंदर बाहर होते हैं। तो शरीर उपदेशे गृह के बाहर से आकाश अंदर बाहर हो गया कि नहीं हो गया? गृह रूपी उपाधि को लेकर के आकाश अंदर भी है बाहर भी है, हो गया कि नहीं? इस बार गृह की तरह कौन हो गया? शरीर। गृह का तेरा शरीर हो गया, इसलिए शरीर की अपेक्षा से जो बाहर है वो बाहर हो गया, आपसे बाहर हो गया, अरे अंदर हो गया सुख दुख मन बुद्धि सब। तो बाह्य घटे दो चेतन, द्विगुणा चैतन्यम, दो चेतन हो गए, दो चेतन हो गए, है ना? एक तो चिदाभास चेतन है, पहले चिदाभास से भी व्याप्त है घट, और कूटस्थ ब्रह्म चेतन से भी व्याप्त है घट, घट व्याप्त होगा। व्याप्त मतलब पहले नहीं बताया, व्याप्त शब्द का अर्थ क्या है? व्याप्ति का अर्थ क्या है? संबंध, व्याप्ति संबंध को बोलते हैं, और संबंध वाला को कहेंगे व्याप्त, ऐसा समझ में ना? हाँ, ऐसा होता है। जैसे संयुक्त चक्षु संयुक्त घट, मैं बोलते नहीं, चक्षु संयुक्त घट मतलब क्या हुआ? चक्षु का जो संबंध हो रहा है घट के साथ, संयुक्त संबंध, संयुक्त संबंध वाला को कहते हैं संयुक्त, ऐसा समझ में? जैसे समवेत बोलते न्याय में, समवाय संबंध वाला को बोलते हैं समवेत, ठीक है? इसी प्रकार यहाँ पर व्याप्ति का अर्थ होता है संबंध, और संबंध वाला को कहेंगे व्याप्त, हो गया? तो चिदाभास की व्याप्ति, चिदाभास का संबंध किसके साथ है? घट के साथ है, इसलिए व्याप्त कौन हो गया? घट हो गया, ऐसा समझ लो, है ना? ये दोनों से व्याप्त घट है, कूटस्थ ब्रह्म से भी है और चिदाभास चेतन से भी, इसलिए घट का भान कैसा हुआ? स्पष्ट हो गया ना? घट का भान, घटम अहम जाना हो, तुमने घट को जाना? हाँ जाना भी, अवश्य जाना, ये बोलते हैं। तो ये तो बाहर का दृष्टांत बता दिया, अंतरे वृत्तिषु अपि, है ना? हाँ, अंतरे वृत्तिषु अपि, ठीक है? अगर अंदर कौन है भाई? वृत्ति, वृत्ति तो अंदर है ना, घटाकार पटाकार ये सब वृत्ति है, है? और यहाँ पर अहंकारा वृत्ति भी है, अहंकारा ये सब अंदर ही है भैया। तो वहां पर भी क्या होंगे? दो चेतन होंगे, वहां पर भी दो चेतन हो जाएंगे ना, है ना? हाँ, चिदावास भी है, वृत्ति है तो चिदावास जरूर होगा कि नहीं होगा? जल रख दिया तो सूर्य का प्रतिबिंब तो पड़ेगा ही, दिन में, रात के बाद में, दिन में मेघ न हो तो, है ना? हाँ, तो इसी प्रकार वृत्ति हो तो चिदाभास तो पड़ेगा ही, किसका पड़ेगा? कूटस्थ का पड़ेगा, कूटस्थ का पड़ेगा, है ना? तो वृत्ति होने से पहले कौन है? कूटस्थ। तो वृत्ति आ गई, आगे मतलब कल्पित हो गई, आती कहीं कहीं से, है ना? वृत्ति कल्पित होगी, वहां पर भासती है, तो भासती है तो वहां पर चिदाभास भी हो जाएगा, ऐसा समझ लो, है ना? जैसे घट से पहले क्या है? दृष्टांत सुनो, घट से पहले आकाश है, घट से पहले आकाश है, तो घट रख दिया तो आकाश भी आ गया, तो कहाँ से आया? जो था वही आया जो पहले से था, इसी प्रकार चिदाभास भी कहीं आता नहीं है। जो कूटस्थ ब्रह्म है ना, वो वहां पर प्रतिबिंबित हो गया विशिष्ट रूप से भाषण है, समझ में ना। तो ये है चिदाभास। तो वृत्ति है तो घर रख दिया तो घटाकाश तो होगा ही, घर रख दिया तो घटाकाश तो होगा ही। इसी प्रकार वृत्ति हो तो चिदाभास तो होगा ही, ऐसा समझ लो। कब तक होगा? जब तक वृत्ति है। और कूटस्थ ब्रह्म कब तक होगा? वृत्ति हो या न हो इसलिए उसका नाम कूटस्थ है, वो जाना आना नहीं, इसलिए उसका नाम कूटस्थ पड़ा। इसलिए कभी कभी व्याकरण में ज्यादा नहीं जाना है ना शब्द में ज्यादा नहीं जाना। अब व्याकरण में यदि गया तब भी भावार्थ जरूर समझना है। इसलिए वेदांत में ज्यादा भूमिका पढ़ने लिखने की नहीं होती है, उसका तात्पर्य क्या है उसको समझना पड़ता है। अच्छा, तो ये बता दिया कि वृत्तिषु अपि अंतरे वृत्ति है ना, वहां पर भी दो चेतन हो गए ना, कूटस्थ चेतन भी हो जाएगा और चिदावा चेतन भी हो गए। इसलिए मुझे काम हो रहा है, मुझे इच्छा हो रही है, मुझे द्वेष हो रहा है, स्पष्ट है कि नहीं? स्पष्ट है ना। डावाडोल तो नहीं होता है, सुख हुआ थोड़ा विचार करते हैं सुख हुआ कि नहीं हुआ, थोड़ा ऐसा तो नहीं बोला जाएगा, स्पष्ट है। अच्छा, लेकिन जो है वृत्तिषुपि तत्र वैसिध्यम, उसमें क्या है? वो स्पष्ट भाषा, वृत्ति में जो भान हो रहा है ना वो स्पष्ट रूप से, वैसे मतलब स्पष्टम, किसकी अपेक्षा स्पष्टम? संधितो अधिकम। देखो संधितो, संधि काल में, संधि काल में दो वृत्ति की संधि है ना, है ना, तो वहां पर कूटस्थ तो है लेकिन कौन नहीं है, तो एक चेतन कम हो गया ना। इसलिए संधि काल की अपेक्षा से वृत्ति काल में स्पष्ट भान होता है, आया सच में ना, ये कह दिया। इसलिए संधितः संधि की अपेक्षा से अधिकम वैसध्यम तत्र वृत्ति में अधिक स्पष्टतया भान होता है ना। तो होता है मतलब देखा जाता है, अनुभव होता है, अनुभव होता है। इसलिए यहाँ पर अध्याय कर लो, है ना, वैसध्यम अधिकम दृश्यते मतलब अनुभूयते, अनुभव होता है ऐसा। टीका में हम लोग देख लेते हैं, बाह्य घटे यथा, तो बाहर जो घट है भाई वहां पर दो चेतन बोल दिया, घट मात्र अभाषक चिदाभास, चिदाभास जो है ना अभाषक मतलब प्रकाशक किसका हुआ? केवल घट का हुआ, केवल घट का हुआ। इसलिए बोलते हैं घट मात्रम अभाषक, घट मात्रम, मात्र का अर्थ एव, घट एव घट मात्रम, समझ में ना, ये घट मात्र का अर्थ होता है। ये चित एव चिन मात्रम, समझ में ना, ये है मोरा वंश का दयश्च, ये सूत्र होता है व्याकरण में, उस सूत्र से समास होता है चित एव चिन मात्रम। इसी प्रकार घट एव घट मात्रम, केवल घट का ही अभाषक होगा, कौन भाई होगा? चिदाभास। एव मात्र लगाने से क्या हुआ फिर? मात्र देने का तात्पर्य क्या हुआ? घट का ही प्रकाशन तो करेगा चिदाभास, है ना, ज्ञात घट का प्रकाशन नहीं करेगा, क्या समझ में आया? ज्ञात घट का नहीं होगा, घटम अहम जानामि, ये जो भान हो रहा है ना ये चिदाभास से नहीं हो रहा है। पहले तो चिदाभास के दर अयम घट ऐसा ही भान होगा, लेकिन जाना हुआ घड़े का भान नहीं होगा, ये तात्पर्य होगा। जाना हुआ घड़े का भान कूटस्थ ब्रह्म से होगा, चिदाभास से नहीं होगा। इसलिए टीकाकार ने कहा घट मात्र अभाषक, समझ में, चिदाभास ने तो घट में ज्ञातता धर्म को उत्पन्न किया, वो समाप्त हो गया, उसका काम हो गया, उपक्षीण हो गया। और घट कैसा हुआ? ज्ञात हो गया, जाना हुआ घड़ा हो गया, मतलब है ना, जाना हुआ घड़ा हो गया, तो जाना हुआ घट का प्रकाशन कुटस्थ से होगा। तो इसी बात को दिखाने के लिए घटमात्र बोल दिया टीकाकार ने, घटमात्र अभासक कह चिदाभास। समझे ना भाई, आगे लिखते हैं देखो, घटस्य ज्ञातता अभासकम ब्रह्म चैतन्यम च। तो घट में जो है ज्ञातता धर्म आया, घट में क्या आया, कहां से आया, चिदाभास, चिदाभास ने घट को, घट में ज्ञातता धर्म को पैदा किया, मतलब जाना, मतलब सब घट को जाना, किसने जाना है ना, इसलिए जानना पना किसका धर्म हुआ, किसका धर्म नहीं हुआ, आप समझ में आया, जानना पना कुटस्थ ब्रह्म में नहीं होता है, जानना पना तो जीव का धर्म होता है। वो ना ज्ञाता है ना वो ज्ञेय है, वो तो ज्ञानी है अभी, वो ऐसे लगे हाँ, इसलिए वो ज्ञान स्वरूप है, वो कैसा है, ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान है, मतलब क्या नहीं है, ज्ञाता भी नहीं है ज्ञेय भी नहीं, आप समझे कि नहीं, ज्ञान स्वरूप बात अलग होती है और ज्ञाता अलग होती है, उसमें ज्ञातृत्व भी नहीं है और ज्ञेयत्व भी नहीं, दृश्यत्व भी नहीं है, दृष्टित्व भी नहीं है, और मैया दृश्यत्व भी नहीं है और साक्षित्व भी धर्म नहीं है, ऐसा समझ लो, इसलिए श्रुति साक्षित्व का भी निषेध कर देती है। अरे भाई दृश्य हो तो आप साक्षी बनेंगे ना, तो आपसे कोई अतिरिक्त दृश्य ही नहीं रहे, किसका साक्षी बनेंगे, साक्षी उसको बोल देते दृश्य को लेकर, ये समझ लो, इसलिए आप जानने वाले हो गए ना, तो जानने वाले हो गए किसको लेकर हुए, आप तो चिदाभास हो गए ना, समझ लो इसको, आप तो चिदाभास हो गए, चिदाभास हो गए ना, जानने वाले हो गए, ये समझ लो, आप समझे कि नहीं, हाँ, तो पहले आप जानने वाले थे क्या, अब इसको अनुभव करके, वेदांत को हमेशा अनुभव घटना, पहले सुनना नहीं, तो आप पहले कैसा थे, ज्ञान रूपी थे, मतलब कूटस्थ थे, समझ में कि नहीं, तो आप जानने वाले थे क्या, नहीं, आप जानने वाले थे क्या, ये पूछ रहा, नहीं थे ना, लेकिन थे जरूर, इतना समझ लो, थे जरूर लेकिन जानने वाले नहीं थे आप, और जानने वाले कब हो गए भाई, चिदाभास हो गया, मतलब क्या हो गया, अरे जानने वाला चिदाभास होता है ना, अरे भाई जब घटाकार वृत्ति हुई ना, तब आप जानने वाले हो गए कि नहीं, नहीं ज्ञानता को छोड़ो बात भाई, आपको समझ लो पहले, आप जानने वाले कब हुए, घटाकार वृत्ति हुई तो आप जानने वाले हुए कि नहीं हुए, है कि नहीं, लेकिन घटाकार वृत्ति अंतकरण में हुई कि आप में हुई, कहां पर हुई, बुद्धि में कहो, अंतकरण जाओ कहिए, घटाकार वृत्ति कहां पर हुई, आप में हुई क्या, नहीं ना, तो नहीं हुई तो जानने वाले कैसे हुए, हम पूछ रहे हैं घटाकार वृत्ति किसका धर्म हुआ, चिदाभास का कहां धर्म हुआ, भी अंतकरण का धर्म हुआ, तो धर्म तो अंतकरण का है, लेकिन जानना किसका धर्म हुआ, आपका हुआ ना, लेकिन जो घटाकार वृत्ति तो अंतकरण का हुआ, आपका तो हुआ नहीं, फिर आप जानने वाले कैसे हुए फिर, हाँ यही हम कहना है, इसलिए आपके मुंह से उत्तर हो इसलिए हम पूछते हैं, समझ में ना, तो आपने संबंध बना लिया ना अंतकरण के साथ, तो अंतकरण का संबंध बना लिया तो वृत्ति जो घटाकार वृत्ति वो भी आप में आरोपित हो गया, वो भी क्या हो गया, आरोपित हो गया, इसलिए आप जानने वाले हो गए, पहले जानने वाले नहीं थे लेकिन थे जरूर, थे जरूर, वो कूटस्थ आप थे, जानने वाला धर्म आने से पहले जो थे ना वो है आपका स्वरूप, तब तो विवेक होगा ना, तो कैसे विवेक होगा, क्यों रोड लोगे भाई जो है क्या है, अंतकरण विशिष्ट चेतन जीव है और कूटस्थ है, उसे क्यों रोड लिया, उससे नहीं होगा, यहाँ पर आपको विवेक करना पड़ेगा, है कि नहीं, विवेक जब तक नहीं करेगा ना, तो तात्पर्य का निर्धारण नहीं होगा, सुनने से तात्पर्य निर्धारण नहीं होता है, और अभ्यास करना पड़ेगा बार बार चिंतन, तत्चिंतनम तत्कथनम की तरह, है ना भाई। तो चलो, तो ये कह दिया टीका में, तो ज्ञातता धर्म आ गया कहां पर, घट में, है ना। तो अब घट कैसा हो गया, ज्ञात हो गया, घट कैसा हो गया, ज्ञात। उसका अभाषक कौन है भाई, ब्रह्म चैतन्यम, ब्रह्म चैतन हो गया। इति चैतन्य दुर्गुण्यम, ये देखो कितना चेतन हो गए, दो हो गए, एक पारमार्थिक और दूसरा कल्पित, कल्पित कल्पित समझ लो, एक पारमार्थिक हो गया एक कल्पित हो गया, एक निरुपाधिक हो गया एक सपाधिक हो गया, आया समझ में ना। जैसे एक शरीर में हुआ जैसा, ऐसा सभी शरीर में हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। तो आप भी देख रहे हो घट को, मैं भी देख रहा हूँ, फिर भी आप बोलते हो ये घड़ा है, मैं भी बोलता हूँ ये घड़ा है, बोलते कि नहीं बोलते, इसलिए। लेकिन सोपाधिक कितने हो गए फिर, अरे सोपाधिक दो नहीं हो गए, आप भी हो मैं भी हो तो सोपाधिक दो हो गए। लेकिन निरुपाधिक कितने होंगे, हाँ आप समझ रहे कि नहीं, इसलिए बातचार तो अनेक हो जाएंगे, और लक्ष्यार्थ कितने होंगे, एक होंगे। तो आपको किसको पकड़ना है, आप समझ रहे कि नहीं, ये होगा, ये इसको कहते हैं तम पदार्थ का शोधन। सोपाधिक अनेक वाच्यार्थ से, है ना, कूटस्थ निरुपाधिक एक को समझना अलग, तब तो विवेक होगा। तो जैसे एक शरीर में हुआ उसी को अनेक शरीर में समझना है, तब जाकर के तत्पद के लक्षार्थ के साथ आप एकत्व का अभ्यास कर सकते हो, निध्यासन जिसको बोलते हैं, आम ब्रह्मास्मि, है ना। तो ठीक है, मैं देखो चैतन्य द्विगुण्यम तथा, उसी प्रकार अंतरे, अंदर में है ये, अंदर कहाँ पर भाई, अंतकण में, देखो वृत्ति उठ रही है भाई, ऐसा है ना। तो सर्व ब्रह्म कहने से आपका स्वरूप का निर्धारण नहीं हुआ ना, सबका स्वरूप बात नहीं, सब कुछ ब्रह्म कहने से आपका स्वरूप का निर्धारण नहीं हुआ, इसलिए सबसे पता क्या लगाना है पता लगाना कि तुम कौन हो बस, इसका पहले पता लगा, वो तो उसका पता लग जाएगा इसलिए कुछ लोग गए मान लो महापुरुष के बाद, और पूछा भाई हम क्या पढ़ेंगे तो जल्दी ज्ञान हो जाएगा, कौन सा ग्रंथ पढ़ेंगे तो ज्ञान जल्दी हो जाएगा, कौन सा ग्रंथ, तो कुछ नहीं पढ़ना, उन्होंने उत्तर दिया कोई भी ग्रंथ नहीं पढ़ना है, सुन लो पहले तात्पर्य, नहीं पढ़ने का नहीं बोल रहा हूँ, पहले तात्पर्य समझो। उस महापुरुष ने कहा कि कुछ नहीं पढ़ना है भाई, कैसे ज्ञान होगा, फिर कौन सा मंत्र का जप करेंगे, वो मंत्र का भी जप नहीं करना, उसको भी छोड़ो भाई, है ना, फिर कोई उपासना करेंगे उसको भी छोड़ो, फिर कैसे होगा, पर ये सब छोड़ो और तुम पता लगाओ कि तुम्हारा स्वरूप क्या है, तुम्हारा स्वरूप क्या, ये पहले पता लगाओ, ये देखो है कि नहीं। इसलिए अपना स्वरूप क्या है ये पता लगाने के लिए सन्यास होता है, क्या है, कोई दूसरा कोई सन्यास का प्रयोजन, भ्रांति लोगों का हो जाए, सन्यास का कोई दूसरा प्रयोजन, कोई प्रयोजन नहीं। तम पदार्थ विवेकाय सन्यास सर्वकर्मणा, अरे कर्म का सन्यास कर दो काय के लिए, तुम्हारा स्वरूप क्या है ये पहले पता लगाओ, घर में नहीं हो रहा इसलिए भागो ऐसा समझे कि नहीं, ये होता है। तम पदार्थ का विवेक हो गया मतलब शोधन हो गया तो उसके साथ एकत्र हो जाएगा, नहीं तो कैसे होगा भाई, है कि नहीं ठीक है। मैं देखो तथा अंतरे अहंकारादि वृत्तिषु अपि, अहंकारादि आदि से क्या लेंगे, काम है क्रोध है सब अंतकरण के जितने धर्म है ना, ये ले लो। तो इसमें भी दो चेतन है, इसमें भी दो चेतन है, तो कूटस्थ चैतन्यम, ये कूटस्थ चेतन हो गया, मतलब अहंकारा वृत्ति आने से पहले जो चेतन है ना वो कूटस्थ चेतन, ऐसा समझ लो, नहीं तो कभी कभी कूटा चेतन तो कभी दूसरा होगा, ऐसा नहीं, अहंकार वृत्ति आने से पहले जो चेतन वो कूटस्थ चेतन, ऐसा समझ में। अच्छा, तो वो होता है वृत्ति अभासक। वृत्ति का अभासक चेतन हो गया, चिदाभासश्च, एक चिदाभास चेतन हो गया, उसमें जो प्रतिबिंब चेतन कौन हो गया, चिदाभास चेतन। भाई वृत्ति हो तो चिदाभास तो रहेगा जरूर, वृत्ति हो तो चिदाभास रहेगा, दो चेतन हो गए ना। देगुणा चैतन्यम अस्ति, इसलिए दो चेतन है ही। तत्र उपपत्तिम आह, उसमें क्या युक्ति है, उपपत्ति मतलब युक्ति, उपपत्ति शब्द का अर्थ युक्ति, इसमें युक्ति बता दिया ग्रंथकार ने, है ना। कौन ग्रंथकार यहाँ पर, कौन ग्रंथकार अभी चल रहा है, हाँ स्वामी भारती, उन्हीं का ही प्रकरण है कुटस्थ देव। इसलिए युक्ति बता दिया श्लोक में, देखो ततस्तत्र वैसद्यम संधितोधिकम, यह है युक्ति। संधि काल की अपेक्षा वृत्ति काल में भान स्पष्ट रूप से होता है, यही युक्ति है। और पकड़ में नहीं, ये युक्ति हो गई। यदि जो चेतन यदि न होता तो स्पष्ट भान नहीं होता, जैसे घट ज्ञान के समय हो गया ना भैया, दो चेतन यदि न होता तो स्पष्ट भान किसका, अहंकार काम क्रोध सुख दुख इसका प्रयोजन चल रहा है। इसलिए यहाँ पर भी दो चेतन है, ठीक है ना। टीका में यतः, क्योंकि द्विगुणा चैतन्यम अस्ति, दो चेतन है, इसलिए ततः संधितः मतलब संधिभ्यः, संधि से, किसकी संधि, हाँ वृत्ति संधि और जागरण स्वप्न संधि, वो भी ले लो सब, है ना। वो संधि से, संधि की अपेक्षा से, तो वो श्लोक माया तत्र है ना, श्लोक में भी देखा करो क्या लिखा है, तत्र, तत्र से वृत्ति सु, मृत्यु में, है ना, मृत्यु कौन सी वृत्ति के बाद चल रही है, अंदर होने वाली वृत्ति, अहंकार काम क्रोध ये वृत्ति, घटा का वृत्ति नहीं है ना। उस वृत्ति में भी वैसद्यम अधिकम दृश्यते, अनुभव होता है, दृश्य का अनुभव होता है ना, अनुभव होगा ना, वृत्ति दिखेगी क्या आंख से, अनुभव, दृश्यते का अर्थ अनुभूयते, इसलिए दृश्य धातु ज्ञान अर्थ में। इति शेष, इतना अध्याय कर लेना चाहिए श्लोक में, हो गया ना भाई। ऐसा मतलब संधि काल में दो चेतन नहीं होते हैं, कुटस्थ चेतन तो होता है, लेकिन वृत्ति काल में दो चेतन होते हैं, है ना, ये हुआ। आगे देखो 23वां श्लोक में लिखते हैं टीकाकार, शंका पहले उठाते हैं, ननु अत्रापि घटादिषु इव ज्ञातता अज्ञातता अभासकत्वेन कुटस्थः किं न इष्यते इति आशंक्य। तो आशंका यहाँ पर कहते हैं, जैसे भाई देखो घटादि में जो है ना, घटादि में आपने कुटस्थ को माना, घटादि में कुटस्थ चेतन को माना कि नहीं, है ना, माना, दोनों चेतन है, दोनों चेतन तो है, है ना। लेकिन वहां पर कुटस्थ चेतन जो हुआ घट में, किस रूप से हुआ, ज्ञातत्ता का अभाषक के रूप से, है ना, और अज्ञातत्ता का अभाषक के रूप से हुआ। इसके समझ लो, देखो है ना, कि देखो पहले जो है ना घट अज्ञात था, क्या था, घट अज्ञात था, मतलब घट का ज्ञान नहीं हो रहा था, है ना, अज्ञान हुआ ना, इसलिए अज्ञान के द्वारा घट में क्या धर्म आया था, अज्ञातता धर्म आया था। उस अज्ञातता धर्म का प्रकाशन किसने किया, अब चिदाभास कहाँ से आ गया भाई, कूटस्थ ब्रह्म है, तो अनुभव कैसा होगा, अहम घटम न जानामि, मैं घड़े को नहीं जानता हूँ, आप सुन में, तो कुटस्थ चेतन के द्वारा प्रकाशित हुआ अज्ञातता, आप सुनेंगे, इसको अनुभव के साथ साथ आगे बढ़ते जाओ, फिर बीच में आ गया घटाकार वृत्ति आ गई, तो चिदाभास आ गया, है कि नहीं, चक्षु के द्वारा जब घटाकार वृत्ति अंतकरण में गई बाहर में, तो वृत्ति के साथ साथ कौन जाएगा? चिदाभास गया, तो चिदाभास गया तो घट का प्रकाश हो गया। आए समझ में? इसलिए घट में एक धर्म आ गया ज्ञातता है, तो उस ज्ञातता को कौन प्रकाशित किया? कूटस्थ। चिदाभास नहीं, कूटस्थ ने किया। अब कूटस्थ अभाषक हुआ ना घट में, पहले अज्ञातता का हुआ, अब क्या हुआ? ज्ञातता का हुआ। ऐसा वृत्ति में क्यों नहीं मानते हो अंदर, ये पूछ रहे यहाँ पे, है ना? ये देखो शंकर, घटादिशु एव, जैसे घटादि में ज्ञातत्ता अज्ञातत्ता अभाषकत्वेन ज्ञातत्ता का प्रकाशक होकर के कूटस्थ रहा और अज्ञातत्ता का प्रकाशक होकर के कूटस्थ रहा घट देश में, है ना? ठीक इसी प्रकार है ना, शुरू में अत्रापि क्या लिखा है? अत्र ना अहंकारा वृत्ति, काम वृत्ति, क्रोध वृत्ति में भी ऐसा ब्रह्म को क्यों आप नहीं मानते हो, न इच्छते, क्यों स्वीकार नहीं करते हो? कहां पर? वृत्ति में, अहंकारा कामकारा वृत्ति में, यहां पर भी क्यों नहीं मानते हो? समझ में ना, ये आशंका हो गई। तब कहते हैं तत्र ज्ञाततादि अभावात एव इति आह हेतु हो गया। अरे भाई देखो, पहले घट अज्ञात था तब तो ज्ञात हुआ, पहले घट अज्ञात था तब तो बाद में ज्ञात होगा ना। ज्ञात कौन होगा? पहले अज्ञात हो तो, समझ में? लेकिन ये काम वृत्ति में ऐसा नहीं होता है। काम उत्पन्न हो और आपको ज्ञान न हो, ऐसा होगा क्या? लेकिन घट में तो ऐसा नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है फिर भी घट है कि नहीं? आपको ज्ञान नहीं है फिर भी घट है, समझ में ना? लेकिन वृत्ति में तो ऐसा नहीं होता है। हाँ, आपके अंतकरण में काम उत्पन्न हुआ और आपको ज्ञान न हो, हाँ? तो रसगुल्ला खाने की इच्छा हुई है ना, तो पूछा आपको इच्छा हुई क्या? थोड़ा बीच सोचते हैं इच्छा हुई कि नहीं हुई, ऐसा होता है क्या? इच्छा हुई तो ज्ञात हो जाएगी, है ना? इसको कहते हैं साक्षी भाष्य। साक्षी भाष्य जो होगा ना, जब तक भासेगा तब तक वो रहेगा, जब नहीं भासेगा तो वो नहीं। इसलिए दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक ज्ञाते ही का सत और एक अज्ञात सत। इसको कहें ज्ञाते का सत, ज्ञाते का सत्ता वाला, मतलब जब तक भासेगा तब तक उसकी सत्ता रहेगी, ऐसे में ना। जैसे दृष्टांत प्रसिद्ध समझ लो, रस्सी में सर्प है, रस्सी में सर्प भास रहा है, और सर्प कब तक है? जब तक रस्सी थोड़ी है, जब तक भास रहा है, ये आप समझ में ना। सर्प पहले से भी नहीं था और आगे भी नहीं रहेगा, तो कब तक रहेगा फिर? हाँ, जब तक। इसको कहें ज्ञाते ही का सत। ये सर्प कैसा हो गया? अनिर्वचनीय जो पदार्थ होगा ना, उसको कहेंगे ज्ञाते ही का सत। प्रातिभाषिक पदार्थ जो भी होगा वो ज्ञाते ही का सत होगा, ऐसा समझ में कि नहीं है, है ना? ठीक इसी प्रकार अंतकरण के धर्म भी होंगे, जैसा प्रातिभाषिक पदार्थ रस्सी सर्प सुक्ति रजत वगैरह हुए ना, सपना भी ले लो, है ना? जब तक भास रहे हैं तब तक वो है, जब तक भास रहे हैं तब तक उसकी सत्ता है, मतलब है कि नहीं? और जब नहीं भासेगा तो उसकी सत्ता खत्म, है कि नहीं? ठीक इसी प्रकार अंतकरण के भी धर्म जितने होंगे, है ना, अहंकार वृत्ति मैं के रूप से, काम हो, सुख हो, दुख हो, श्रद्धा अश्रद्धा, जितने भी अंतकरण धर्म गिनाए गए हैं, है ना, ये सब कब तक होंगे? जब तक वो भासेंगे। किसके तरह भासेंगे? कूटस्थ। अब सुनिए कि नहीं, ये कह रहे हैं। लेकिन घट में ऐसा नहीं है, घट का ज्ञान न होने पर भी घट की सत्ता है कि नहीं? उस घटादि पदार्थ को, व्यवहारिक पदार्थ, अंतकरण से बाहर जो पदार्थ है, अंतकरण के धर्म से जो बाहर पदार्थ है ना, वहां पर आपको ज्ञान न होने पर भी उसकी सत्ता तो है। उसको क्या बोलेंगे? अज्ञात सत बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे? अज्ञात सत, अज्ञात मतलब ज्ञात न होने पर भी उसकी सत्ता है, उसको कहे अज्ञात सत। तो इसलिए यहां पर कहते हैं, इसलिए घटादि में तो ऐसा हो जाएगा, अंतकरण के धर्म में ऐसा नहीं होगा। हो गया कि नहीं? इसका विचार हम कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।